संगयग्निदंष्ट्यसि जल द्विजकण्टकेभ्य क्रीड़ा परावती चलौ स्वसुतौ निषेद्धुम् ग्रहयाणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ शेकात् आप तुरलं मनसो नवस्थां। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। कृष्ण और बलराम अब लीला करने के योग्य हो रहे थे। दोनों बहुत ही चंचल और बहुत ही क्रीड़ा प्रेमी थे। कभी गाय आदि के सींग वाले पशुओं से छेड़खानी करते, कभी जलती आग से लकड़ी निकालते, कभी कुत्तों से छेड़खानी करते, तो कभी घर में रखी तलवार म्यान से निकाल लेते, कभी कुएं में झांकते, कभी पक्षियों के साथ खेलते, माता पीछे पीछे दौड़ती रहती, ये मत करो ये मत करो, थक जाती, अपने आवश्यक वस्तुओं के बचाव में लगी रहती। काम कौन करेगा, सारी अव्यवस्था ही अव्यवस्था। एक दिन जब माँ गायों को चारा दे रही थी, कृष्ण माखन की हंडिया के पास जा पहुंचे। जैसे ही माखन निकालने के लिए हंडिया में हाथ डाला, माँ की आवाज आ गई, कृष्ण कौसी करोशि किम पितुरिति श्रुत्वैव मातुर्वचः। हे कृष्ण कहाँ है, अरे मेरे बाप क्या कर रहा है। माता के वचन सुनकर कृष्ण ने तत्क्षण उत्तर दिया, माता कंकड़ पद्म राग महसा पाणी मा तप्यते तेनायम नवनीत भांड विवरे विन्यस्य निर्वापिता। कृष्ण बोले, माँ मैं यहां हूं, तुमने जो पद्म राग से जड़े हुए कंगन मुझे पहनाए थे, धूप लगने से वे लाल होकर जलने लगे, इसलिए मैंने हाथ मक्खन के मटके में डाल रखे हैं। कमाल है। इसलिए जब कभी कृष्ण और बलराम बाहर जाते थे, माता यशोदा उन्हें डराती,
बाहर मत जइयो रे काना, बाहर बैठा हाऊ है, काला मुख लंबे दांतों से जाने क्या क्या खाऊ है, जो पावत कोई छोटा बालक झट्टी पकड़ ले जाऊ है, बाहर मत जइयो रे बा।
एक दिन ऐसे ही रात में यशोदा कृष्ण को सुलाने के लिए कहानी सुना रही थी। उनकी एक ही शर्त थी कि प्रत्येक पंक्ति पर कृष्ण हुंकारा भरेंगे, हूं हूं करने का। कहानी कहने लगी, रामो नाम बभूव, कृष्ण बोले हूं, तदबला सीतेति, कृष्ण ने फिर हुंकारा भरा, हूं तौ पितुर वाचा पंचवटी बने निवसता तामाहरत रावण। भैया राम नाम के एक व्यक्ति हुए थे, कृष्ण बोले हूं, उनकी पत्नी सीता थी, कृष्ण ने फिर भी हुंकारा भर दिया, हूं। वे दोनों पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके पंचवटी वन में रहने लगे। वहां रावण ने सीता का हरण कर लिया। इतना सुनना था,
कृष्णेति पुरातन निज कथा आकर्ण मात्रे रिता सौमित्रे को धनुर धनुरिति प्रोक्ता गिरा पांतु वह।
कृष्ण ने अपनी ही रामावतार की कथा को जब माता के मुख से सुना तो क्रोध में भरकर बोले, लक्ष्मण मेरा धनुष कहाँ है, कहाँ है मेरा धनुष? भगवान कृष्ण के मुख से कही गई सुरक्षा के लिए ये सुंदर वाणी हम सबकी भी रक्षा करें।
बोल कृष्ण बलदेव की जय।
भगवान कृष्ण ने माखन के मटके में क्या हाथ डाला कि माखन की मटकियों में हाथ डालने की जैसे उन्हें आदत हो गई। अपनी उम्र के ग्वाल बालों की टोली बना ली और घर घर घुसकर माखन चुराने लगे। हर समय यही विचार आता उनके मन में कि कब और किसके यहां जाकर माखन चोरी की जाए।
मन में यही विचार करें हरि, ब्रज के घर घर जाऊं, गोकुल जन्म लिया है तो फिर सबका माखन खाऊं।
गोपियों को भी इस लीला में आनंद आने लगा। वे भी यही आकांक्षा करती थी, कृष्ण हमारे यहाँ आए और चुराकर माखन खाएं। माखन को नवनीत और नवनीत को स्नेह भी कहते हैं। भगवान तो बस स्नेह प्रेम के भूखे हैं और माखन की क्या कमी थी, नंद भवन में भरा पड़ा था किंतु उस माखन के लेने में कोई लीला नहीं थी। लीलाधारी कृष्ण को लीला करनी थी। लीला में प्रेम, लुका छुपी, भाग दौड़, खेल कूद सभी छिपा रहता है, सभी व्याप्त रहता है। इसमें आनंद है। जगत का सार प्रेम है और प्रेम लीलाओं में व्याप्त रहता है। लीलाधारी व्याप्त प्रेम में स्वयं व्याप्त होकर सच्चिदानंद रूप प्राप्त कर रहे थे। गोपियों में तो मानो प्रेम का सागर उमड़ रहा था। कृष्ण को तो उसमें स्नान करना ही था। क्षीर सागर में सदा शयन करने वाले भगवान विष्णु के पूर्णावतार कृष्ण प्रेम के सागर में डूबकर अपना मूल रूप प्राप्त करते थे। लीला देखने में लगती है किंतु रहस्य नियमों में बंध कर काम करता है। वैसे भी मांग कर खाना कोई घटना नहीं है, कोई लीला नहीं है, चुराना लीला है। लीला में आनंद है और भगवान आनंद कंद वो द्वंद्वों में नहीं रहते। द्वंद्व संघर्ष का दूसरा नाम है। संघर्ष किसी अभाव को दूर करने के लिए, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन जो आप्त काम पूर्ण पुरुष हैं उन्हें संघर्ष या द्वंद्व नहीं, लीला में रमण करना है। लीला ही उनका एकमात्र उपाय है। कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम, लीला उनका स्वभाव है। अपने गोलोक में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के साथ निरंकुश लीलाएं करते हैं। माखन लीला उसी की एक कड़ी है। भगवान प्रेम के वशीभूत रहते हैं। भगवान तो मनुष्यों के हृदय में यदि प्रेम है तो बस वही ग्रहण करते हैं। यही प्रेम ही तो माखन है। गोपियां प्रेम का सरोवर हैं। भगवान उनके प्रेम के वशीभूत होकर उनका माखन अर्थात प्रेम चुराने जाते थे। वे भी इसी प्रतीक्षा में रहती थी कि कृष्ण उनके यहाँ आएं और उनका माखन चुराएं और खाएं। कृष्ण को पकड़ना, माखन की मटकी को उनसे बचाना और उसे ऊंचे छींके पर टांगना, ये भी उस लीला का एक भाग बन गया था। और कृष्ण अपनी गोप लीलाओं से उनके छिपे टंगे माखन को चुराते थे। गोपियां यशोदा से शिकायत करती हैं। यशोदा झींकती, खिसियाती, क्रोधित होती है और इस प्रकार से माखन लीला चलती है।
एक गोपी का माखन चुरा कर जो भागे, बोलाई शिकायत यशोदा के आगे। वहां और भी गोपियां जो खड़ी थीं, यशोदा से सब बारी बारी लड़ी थी। कहा तेरा मोहन चुराता बहुत है। खाता है कम पर गिराता बहुत है। कहा कृष्ण ने झूठ कहती है माता, इसी घात में सब ये रहती है माता। जो पन घट पर इनको दिखाई ना दूं मैं, जो मुरली बजाता सुनाई न दूं मैं, तो रोती हैं रोती हैं बेचैन होती हैं माता। मेरी याद कर आंसू खोती हैं माता, न दिन में मिला हूँ न निश को मिला हूँ, बड़े दिन के बाद आज इनको मिला हूँ। ये झूठी शिकायत ही ले आई माता, मुझे देखने के लिए आई माता।
यशोदा कृष्ण का तर्क सुन के हंस पड़ी और प्रेम मगन होकर कृष्ण को छाती से लगा लिया। क्रोध में भरकर सारी गोपियों को डांट कर भगा दिया। बोलो माखन चोर श्री कृष्ण की जय।
वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, स्मृत्यां शिरास्तव निवास जगत प्रणाम, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां।
हे प्रभु, हमारी वाणी सदैव आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी इसी प्रकार की लीला कथा रस में डूबे रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा से कभी विराम न लें और मन आपके चरण कमलों का भौंरा बनकर उसके पराकणों में लिपटा रहे। जितने भी संत हैं सब में आप विद्यमान हैं, उनके आगे हमारा सिर सदा झुका रहे और दृष्टि सदा उनके दर्शनों के लिए व्याकुल रहे। ये आशीर्वाद प्रभु हमें दे दो। परीक्षित को भगवान की बाल लीलाएं अत्यंत अलौकिक और आनंदप्रद लग रही थी। वही क्या, भगवान के सभी भक्तों को भगवान की बाल लीलाएं अत्यंत रुचिकर लगती हैं। सारे भक्त यही चाहते हैं कि प्रभु हमें वैकुंठ या मोक्ष धाम प्रदान मत करना, हमें तो बार बार ब्रजभूमि की पवित्र भूमि में उत्पन्न करना, जहां यमुना हो, करील की कुंजे हो, सांसारिक भावना से दूर प्रेम भरी गोपियां हों, ममता भरी माँ की यशोदा की गोद हो, गाय हो, गोपाल हो। आप तो जानते ही हैं, एक कवि हुए हैं रसखान, उन्होंने इसी भाव को एक सवैये में पिरो दिया है।
मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरों नित नंद की धैनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिलिकालंदिकूल कदम्ब की डारन।
कितना सुंदर भाव है, बैकुंठ जाकर क्या करेंगे, कहा करो बैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जशोदा माता जाह नहीं गोपी गाएं, जहां नहीं जमुना का निर्मल जल, जहां नहीं कदंब की छाएं, परमानंद ग्वालिन उठ बोली ब्रज तज द्याय बलाएं। ये है ब्रज की महिमा, सब मुग्ध है उसकी महिमा पर, सब चाहते हैं ब्रज की कण कण में लौटना, जैसे कण कण भगवान कृष्ण के चरण कमलों के पराग वहां बिखरे हुए हैं। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित की रुचि और जिज्ञासा को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और भगवान की अनेक लीलाएं उन्होंने प्रेम से सुनाई, जिनमें भगवान कृष्ण का ऊखल में बांधे जाना, उसके माध्यम से यमला अर्जुन उद्धार की कथा भी सुनाई। अब ये समझ के परे है कि कृष्ण भगवान ने स्वयं माता यशोदा को प्रेरणा दी थी कि वो उन्हें उखल में बांधे, क्योंकि उन्हें वृक्षों की योनि में जी रहे यमला अर्जुन का उद्धार करना है, अथवा माता ने जब दूध पीते कृष्ण को हटाकर उबलते दूध को उतारा तब क्रोध में भरकर कृष्ण ने मथानी सहित दधी माठ तोड़ दिए और छीके पर टंगे माखन को लेने के लिए ऊखल उल्टा और माखन निकालने के लिए चढ़ गए उस पर, माखन निकालकर बंदरों को खिलाने लगे। ये देखकर माँ यशोदा को क्रोध आ गया और उन्होंने उसी ऊखल से कृष्ण को बांध दिया और तब कृष्ण ने यमला अर्जुन का उद्धार किया। उन दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण की जो प्रार्थना की वो भी सुनने के लायक है।
बाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ चकर्म सुमनस तब पादयोर्ना स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनां।
हे प्रभु, हम पर अनुग्रह कीजिए और हमें सतत प्रेरणा दीजिए कि हमारी वाणी आपके गुण संकीर्तन में लगी रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा के सदा प्यासे रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे रहें, हमारा मन आपके चरण कमलों के पराग कणों में रमने वाला भौंरा बनकर गूंजता रहे। ये संपूर्ण जगत आपका ही तो निवास स्थान है, अतः हमारा मस्तक सभी पद पदार्थ जीवों को प्रणाम करता हुआ झुका रहे। ये संत तो आपके ही स्वरूप हैं, हमारी आंखें सदा उनके दर्शनों की प्यासी बनी रहें। ऐसा कहकर दोनों ने भगवान कृष्ण की परिक्रमा की और ऊखल से बंधे त्रिलोकाधिपति कृष्ण की आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चले गए। ऊखल बंधन कृष्ण की गृह लीलाओं से संबंधित है। इसके बाद कृष्ण बड़े हो गए, ग्वाल वालों के साथ गायें चराने के लिए वन में जाने लगे, अतः वहां उन्होंने उन असुरों का वध किया जो घर में मारे जाने के योग्य नहीं थे। वत्सासुर, बकासुर, अघासुर ऐसे राक्षस थे कि घर पर कृष्ण उनके वध की लीलाएं कर ही नहीं सकते थे। कृष्ण की ये लीलाएं वृंदावन में हुई, क्योंकि नंदराय गोकुल छोड़कर अब वृंदावन में ही रहने लगे थे। वे गोकुल में होने वाले नित्य प्रति उत्पातों से बहुत दुखी हुए थे। अघासुर बड़ा अजगर बनकर आया, मुंह खोला जैसे बहुत बड़ी काली गुफा हो और लेट गया जहां बाल गोपाल दोपहर में खेलते थे। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। खेलते हुए ग्वाल बाल अघासुर के मुंह में घुस गए, वो समझे खेल खेल में ये एक गुफा है, चले गए उसमें। कृष्ण अघासुर की सारी लीलाएं ताड़ गए, वे शीघ्र उसके मुख में स्वयं भी घुस गए। भगवान ने अपना शरीर इतना बढ़ा लिया, भगवान तो विराट पुरुष भी हैं, इतना बढ़ा लिया कि अब असुर का सांस लेना मुश्किल हो गया, छटपटाने लगा और वहीं ढेर हो गया। कृष्ण ग्वाल बालों सहित सुरक्षित बाहर आ गए। कंस ने जितने भी असुर कृष्ण को मारने के लिए भेजे, कृष्ण ने उन सब को खेल खेल में मार दिया। माता यशोदा नंद बाबा तथा ग्वाल बालों से साधारण बालक की तरह व्यवहार करते रहे, ताकि उनका ये अलौकिक रूप कहीं, ये जो प्रेम है आपस में माता पिता के प्रति, वो कम ना हो जाए। क्योंकि अगर वो ये समझ लेंगे कि कृष्ण तो परात्पर ब्रह्म है, तो फिर वो पुत्र जैसा स्वाद, पुत्र जैसा व्यवहार समाप्त हो जाएगा। विधाता ब्रह्मा के मन में कृष्ण के परात्पर रूप के विषय में संदेह हो गया, क्योंकि उन्हें यह पता था कि कृष्ण वृंदावन में हुए हैं और यही हो सकता है। लेकिन वो जब साधारण लीलाएं करते थे अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ, ग्वालों के साथ, गायों के साथ, तो उन्हें मति भ्रम हो गया। मति भ्रम के निवारण के लिए ब्रह्मा ने भोजन करते हुए बाल ग्वालों की, गाय बछड़े सब चुरा लिए। कृष्ण उनकी इस चेष्टा को समझ गए। कृष्ण तो लीलाधारी हैं, लीला से गायों बछड़ों की अत्यंत गुप्त रूप से उन्होंने ऐसी रचना कर दी कि किसी को इस रहस्य का जरा सा भी पता नहीं चला। उसके विपरीत गोप गोपियों का प्रेम गायों बछड़ों के प्रति बढ़ गया। बात यह थी कि कृष्ण ने अपने ही स्वरूप से गायों और बछड़ों का निर्माण किया था। अब वो गाय बछड़े नहीं थे, स्वयं कृष्ण थे, इसलिए अगर प्रेम बढ़ गया तो सहज था। कृष्ण के स्वरूप का साक्षात विस्तार इन गायों बछड़ों में हुआ। अतः कृष्ण के प्रति जैसा प्रेम सबका था, वैसे ही प्रेम गाय बछड़ों में आ जाना सहज है। एक साल बीत गया। ब्रह्मा जी ने देखा वृंदावन में गाय बछड़े वैसे ही हैं जैसे पहले थे, तो सोचने लगे अरे मैंने किन्हें चुराया था। फिर ध्यान आया, उन्हें अपने ज्ञान पर लज्जा का अनुभव हुआ। वो कृष्ण की शरण में गए और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नोमिड्यते अभ्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल नेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, आपका श्यामल शरीर वर्षाकालीन मेघों जैसा सुंदर है, उस पर सुशोभित पीतांबर ऐसा मान पड़ रहा है जैसे बिजली चमक रही हो, विद्युत धारा जैसे चमक रहा है। आपके गले में पड़ी घुंघचू की माला, कानों में मकराकृति कुंडल, सिर पर मोर मुकुट और वक्षस्थल पर लटकती वनमाला, बगल में वेत्र सिंगी और बांसुरी कैसी सुशोभित है। आप सब प्रकार से स्तुति करने के योग्य हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। बाल गोपाल के वेश धारी कृष्ण, आपके कमल कोमल चरणों पर मैं निछावर हूं। व्यर्थी लोग मुझे विधाता के नाम से पुकारते हैं, आपके सामने तो मैं अज्ञ बालक ही हूं। मैं अनेकों कल्पों तक भी यदि तुम्हें प्रणाम करता रहूं तो भी मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं होगा। आप मुझे क्षमा कर दें और मुझ पर कृपा करें। स्तुति के पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की परिक्रमा की और ब्रह्मलोक चले गए। वास्तव में कृष्ण का मानव चरित्र उनके गोलोकवासी चरित्र के बीच में एक व्यवधान है। सृष्टि में सृष्टि विकास एवं संयोजन के लिए उत्पन्न हुए ब्रह्मा विष्णु महेश गोलोकवासी लोकातीत पार ब्रह्म परमेश्वर को कैसे जान सकते थे? एक जो पैदा नहीं हुआ और दूसरे ये तीन जो पैदा हुए हैं, सृष्टि के क्रम में हैं, सृष्टि के साथ ही इनकी रचना की गई है। जिसकी रचना की गई है वो अपने रचनाकार को कैसे जान सकता है? इसीलिए कहा गया है कि संसार पंख से बाहर निकल कर ही हम इस योग्य होते हैं कि ब्रह्म के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकें। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ग्रस्त धर्म का विधिवत पालन करने के बाद देव पितृ गुरु इन तीनों के ऋण से उऋण होने के बाद व्यक्ति अगर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसको इसकी योग्यता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब तुम ग्रस्त धर्म का पालन पूरी तरह से कर चुके हो, आओ ब्रह्म की जिज्ञासा तुम्हारी बिल्कुल उचित है। धर्म का पालन करना तो बड़ी बात है। अपनी स्वेच्छाचारिता से जीवन बिताने वाला व्यक्ति जैसे कॉफी हाउस में बैठकर राजनीति अथवा व्यवसाय की चर्चा करते हैं, वैसे ही धार्मिक व्यक्तियों के बीच बैठकर ब्रह्म की भी चर्चा कर लेते हैं। कुछ खंडन किया, कुछ मंडन किया, कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं, कोई व्यावहारिक अनुभव नहीं, मन में जीव जगत और ब्रह्म के की इस बंधी गांठ को खोलने के लिए कोई प्रबल इच्छा भी नहीं है। केवल तर्क, आधारहीन तर्क के बल पर ब्रह्म के दर्शन बघारने की जैसे होड़ लग गई है आजकल। जिस तत्व को ब्रह्मा नहीं जान सके उसको बिना तप ज्ञान और साधना के हम कैसे जान सकेंगे? ये छोटी सी बात है। भागवत में उसी तप ज्ञान और साधना से अर्जित स्थिति का विशद विवरण है। क्योंकि ग्रस्त धर्म सामान्य धर्म से ईश्वर को जानना असंभव है, इसीलिए भागवतकार ने धर्मा प्रोज्झित कैतवोत्र परमो ये प्रारंभ में ही कह दिया। धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि इच्छाओं से परे परब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए परम धर्म की आवश्यकता होती है। उसी ओर भागवतकार का संकेत है। धर्म पालन समर्पण नहीं है, कर्ता भाव से इच्छा पूर्ति के लिए फलदायी धर्म परमात्म तत्व का बोध कराने में पंगु हैं, लंगड़े हैं, अयोग्य हैं। समर्पण में कर्ता और कर्म बोध दोनों का लोप होता है। ना मैं करता हूं और मैं कर भी नहीं रहा, क्योंकि कर तो आप रहे हैं। कर्ता भगवान है और सारे कर्म उसी को लेकर हैं। इसीलिए इस समर्पण भाव में अबोध निरीह भोली गोपियां ही उपयुक्त हैं। ज्ञानी उद्धव, ध्यानी मैत्रेय और तपस्वी विदुर उस समर्पण भाव के पारंगत पंडित नहीं हैं। प्रकृष्ट रूप से कृष्ण भाव में रम जाना गोपी को आता था, उद्धव को नहीं आता था, मैत्रेय को नहीं आता था, विदुर को नहीं आता था, अन्य किसी को नहीं आता था। अस्तु कथा आगे बढ़ाएं। एक दिन तालबंद में धेनु का सुर का वध करके जब कृष्ण और बलराम के साथ ग्वाल बाल लौट रहे थे तो प्यास से व्याकुल होकर उन्हें काली देह में जल दिखाई पड़ा, वो जल उन्होंने पी लिया। जल में कालिये के विष के प्रभाव से सभी मूर्छित हो गए। कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से सबकी मूर्छा तो दूर कर दी, साथ ही काली देह के जल को विषरहित करने का संकल्प भी ले लिया। वो कालंदी के उस जल को देखकर अत्यंत दुखी हो गए।
कालंद्याम कालियस्यासी ध्रदः कश्चित् विषाग्निना श्रप्यमाण पयायस्मिन् पतंत्युपरिगा खगा।
यमुना में कालिय नाग का एक कुंड था जिसका जल कालिय नाग के विष के प्रभाव से खौलता रहता था। बड़ा भयानक था कालिय का विष। उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी उससे झुलस झुलस कर मरते थे और उस कुंड में ही गिर जाया करते थे जिसको कालिय नाग खा लेता था। भगवान को व्यास जी ने उस स्थल पर खल संयमनावतार कहा है। उन्होंने कहा है,
तम प्रचंड वेग विषवीर्य भवे क्षतेन दुष्टाम नदी च खल संयमनावतार कृष्ण कदम्बमधिरुह्य ततोति तुंगम आसोट्य गाढ़ रशनो न्यपदद विशोदे।
भगवान कृष्ण का जन्म दुष्ट राक्षसों खलों असज्जनों का विनाश और सज्जनों की रक्षा के लिए हुआ था। जो दूषित करे वो दुष्ट। कालिये ने कालंदी का जल अपने विष से दूषित कर रखा था। उस दुष्ट खल का संयमन करने के लिए कृष्ण कालीदेह के पास उगे कदंब की सर्वोच्च शाखा पर चढ़ गए और वहीं से कालीदेह में छलांग लगा दी। जब तक बाल गोपाल देखें कृष्ण कालीदेह में अंतर्ध्यान हो गए। बार बार झांक कर देखने पर भी कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दिए। पूरे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया कि कृष्ण कालीदेह में कूद गए, डूब गए। सारा ब्रज कालीदेह पर आकर रुदन करने लगा। अचानक ही उन्होंने कालिया नाग के सिर पर नृत्य करते अपने नटवर नागरनंदा को गोविंदा को देखा।
कृष्णम हृदाद विनिष्क्रांतम दिव्य स्रग गंधवाससम महामणि गणाकीर्ण जांबू नद परिष्कृतम।
भगवान कृष्ण काली देह के बाहर निकले। उस समय काली नाग पत्नियों के द्वारा प्रदत्त मणिमाला धारण किए हुए थे, स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित थे। उनका समस्त शरीर दिव्य गंध से महक रहा था। यशोदा सहित सारी गोपियां और नंद सहित सारे ग्वालों में प्राण आ गए।
बोलो नागनथैया की जय।
जो सुख मिले हरि गुण गाए, जो सुख मिले हरि गुण गाए, जो सुख मिले हरि गुण गाए, वो सुख मिले नहीं जप तप में, वो सुख मिले नहीं जप तप में ना तीर्थ में जाए। जो सुख मिले हरि गुण गाए, जो सुख मिले हरि धर्म अर्थ अरु काम मुक्ति सब धर्म अर्थ सब धर्म अर्थ सब काम मुक्ति सब मिले श्री हरि मिले श्री हरि चरण चित लाए। जो सुख मिले हरि गुण गाए, जो सुख मिले हरि
हेमंत ऋतु आ गई। ब्रज की सारी कन्याएं अनुकूल सुंदर विद्यावान पति प्राप्ति के लिए कात्यायनी देवी का व्रत करने लगी। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व यमुना स्नान करती, फिर तट पर देवी कात्यायन की बालुकामयी मूर्ति बनाकर षोडशोपचार विधि से पूजा करती, अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करती,
कात्यायनी महाभागे महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः।
हे महायोगिनी कात्यायनी देवी, तुम हम सब की एकमात्र स्वामिनी हो। आप नंद नंदन कृष्ण को हमारा पति बनाने की प्रेरणा दो। यमुना तट पर प्रातः काल आती, निर्वस्त्र स्नान करती, पूजा अर्चना के बाद इसी मंत्र का जाप करती। एक दिन जब वे यमुना में निर्वस्त्र घुसी, भगवान कृष्ण उनके वस्त्र लेकर कदम के वृक्ष पर जा बैठे, ऊंची शाखा पर। गोप कन्याओं ने जब कृष्ण को वस्त्र सहित कदम पर बैठे देखा तो उनसे प्रार्थना करने लगी, देही वासांसी धर्मज्ञ, हे कृष्ण आप तो धर्मज्ञ हैं, सारे धर्मों को जानते हैं, हमें वस्त्र देने की कृपा करें, क्योंकि निर्वस्त्र जल से निकलना अधर्म है। जब कृष्ण ने धर्मज्ञ कहे जाने पर भी उनकी बात नहीं सुनी तो वो धमकाने लगी, नो चेत राज्ञे ब्रुवामहे, अरे नहीं तो हम राजा से तुम्हारी शिकायत कर देंगी। कृष्ण हंस पड़े, बोले राजा का अब मत भय दिखाओ, नग्न स्नान करके तुमने वरुण देवता यमुना जी दोनों का अपमान किया है, हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ, बाहर आओ और अपने अपने वस्त्र ले लो। कृष्ण ने देखा सभी कन्याएं उनकी आज्ञा मानकर प्रणाम कर रही हैं, उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। कृष्ण ने उनसे कहा, न मैया वेशिता धियाम कामः कामाय कल्पते, भर्जिता कथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। हे गोप कन्याओं, जो मुझे प्राण मन देकर पति रूप में आप पाना चाहती हैं तो पति के रूप में आपकी सांसारिक कामनाएं भोग आसक्ति पूर्ण नहीं होगी। मैं तो अब भुने हुए चने के समान हो गया हूं। भुने हुए चने को बोने से अंकुर फूटते हैं क्या? नहीं फूटते। कृष्ण ने इसीलिए गोपियों से कहा, प्रिय गोपियों, गोप कन्याओं, यदि मुझे पति रूप में पाना चाहती हो तो तुम्हें केवल आत्मा के स्तर पर ही मैं मिल सकता हूं। मेरा किसी से शारीरिक संबंध संभावित नहीं है, मैं शरीर के स्तर पर किसी से नहीं मिलता, शरीर के वस्त्रों का त्याग करके ही मुझे पाया जा सकता है, मैं केवल आत्माओं में रमण करता हूं। जब जब एकाग्र चित्त तन में समाधि में लीन होकर मेरा ध्यान करोगी, मैं पति के रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। पति पाती थी पति, जो रक्षा करे वो पति, और मैं तो रक्षा करता हूं। एक दिन कृष्ण ने देखा नंद बाबा और मां यशोदा किसी बड़े अनुष्ठान की तैयारी कर रहे हैं, घर में सुंदर सुंदर पकवान फल फूल इकट्ठे किए जा रहे हैं। कृष्ण को जिज्ञासा हुई कि क्या हो रहा है। उन्होंने नंद बाबा से पूछा, बाबा आप किस अनुष्ठान के लिए ये सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं? बाबा नंद ने सहज भाव से उत्तर दिया, बेटे हम इंद्र याग की तैयारी कर रहे हैं, वो जल के अधिपति हैं, प्रसन्न होकर जल बरसाते हैं जिससे जीवन और संपूर्ण सृष्टि फलती फूलती है। जिन सामग्रियों से हम इंद्र पूजा करते हैं वे भी जल से ही उत्पन्न होती हैं, जल ही जीवन है। इंद्र याग करने की परंपरा है, जो लोग अहंकार द्वेष अथवा लोभ के कारण परंपरागत धर्मों का पालन नहीं करते उनका भी कभी मंगल नहीं होता। कृष्ण ने कहा, बाबा इस जगत में कर्म ही सब कुछ है, कर्म से मनुष्य उत्पन्न होता है और कर्म में ही मर कर गति प्राप्त करता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा कर्म जानने वालों को ही कर्म में सफलता प्राप्त होती है, जब हम कर्म जानते ही नहीं तो सिद्धि कैसे मिलेगी। अनुष्ठान आदि कर्मों के ज्ञाता ब्राह्मण हैं, हम वैश्य हैं। हमें अनुष्ठान आदि करने आते कहाँ हैं। आजीविका के अनुसार वर्ण धर्म चलता है, ब्राह्मण वेदों के अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य कृषि वाणिज्य गोरक्षा और कुशीद ब्याज पर पैसा देने से और शूद्र सेवा करने से आजीविका चलाता है। दूसरा कर्म नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा नहीं है। मनुष्य को अपने वर्ण के अनुसार कर्म करने चाहिए, यही उसका धर्म है। तस्मात् संपूजयेत् कर्म स्वभावस्थ स्वकर्म कृत, इसलिए अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने वाले को अपने कर्म की ही पूजा करनी चाहिए। हम तो वनवासी हैं, हमारे न गांव है न घर, गायें ब्राह्मण और ये गिरिराज ही हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं और हमारे कर्मों के अनुकूल देवता हैं। हे बाबा, जो सामग्री अपने इंद्र याग के लिए एकत्रित आपने की है उसी से हम अपने प्रत्यक्ष अधिदेवता की अभ्यर्चना करके उन्हें प्रसन्न करेंगे। सब प्रसन्न हो गए। बड़े उत्साह से ग्वालों ने गो ब्राह्मण और गिरिराज की पूजा की, गऊ को सजाया, गिरिराज को फूलों से अंकित किया। उनके इस कर्म से इंद्र क्रुद्ध हो गया, उसने प्रलय करने वाले सांवर्तक मेघों को बुलाया और बोला, अहो श्री मद महात्म्यम गोपानाम काम नौकुशाम कृष्णम मृत्यम मुबाशित्य ये चक्रु देव अवहेलनम। अरे इन वनवासियों का अहंकार तो देखो, मृत्यु के एक साधारण मानव की बात मानकर मेरी जगत की एकमात्र स्वामी की उन्होंने अवहेलना की है। फिर क्या था, कृष्ण की महिमा से अनभिज्ञ, अपने आप को त्रिलोकीनाथ मानने के गर्व से चूर इंद्र ने गोकुल को भयंकर प्रलय कालीन मेघों के अधीन कर दिया। सारा गोकुल जलमग्न हो गया। कृष्ण ने इंद्र का अहंकार नष्ट करने के लिए सारे ग्वाल वालों को गिरिराज गोवर्धन के पास बुला लिया और जैसे बालक कुकुरमुत्ते का वृक्ष उखाड़ लेता है, कृष्ण ने उसी तरह से गोवर्धन उखाड़ कर धारण कर लिया। सब उसके नीचे आकर पूर्ण सुरक्षित हो गए। इंद्र अपना अपराध समझ गया और यह भी समझ गया कि कृष्ण परात्पर हैं, कोई साधारण मानव नहीं है। कृष्ण की शरण में आकर स्तुति करने लगा, ईश्वरम गुरुमात्मानम त्वामहं शरणं गता। हे कृष्ण, आप ही सर्व आत्माओं के गुरु हैं, सबके ईश्वर हैं, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी शरण में हूं। सारे गोप गोपियां गाने लगे, धारा रे धारा हरि ने गिरि गोवर्धन धारा रे धारा हरि ने गिरि गोवर्धन धारा रे हारा हारा इंद्र लोक
स्वामी हारा रे धारा हरि ने गिरि गोवर्धन धारा रे।
बोलो गोवर्धन धारी कृष्ण कन्हैया की जय। श्रीमद् भागवत में रासलीला के 5 अध्याय हैं, इसलिए उसे रास पंचाध्यायी भी कहते हैं। वैसे भी पंच भौतिक तत्वों से बना ये शरीर जब तक कृष्णांश आत्म तत्व से नहीं मिलता तब तक वो निरर्थक है, निर्जीव है। चीरहरण प्रसंग से ही महारास की नींव पड़ जाती है। जब गोप कन्याएं कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी व्रत करती हैं और कृष्ण उन्हें निर्वस्त होकर संसार जल से बाहर निकलने के लिए उपदेश करते हैं, शारीरिक सुख भोग में उन्हें कोई रुचि नहीं है, कोई भी शरीर से उन्हें प्राप्त कर ही नहीं सकता, वो तो केवल आत्मा में ही रमण करते हैं। कहते हैं कि सभी प्राणियों का रक्षक होने के कारण वो सबके पति हैं। गोपी का अर्थ है अपने रक्षक को पाने के लिए व्याकुल, और रक्षक तो कृष्ण है। अतः रास तो अध्यात्म मिलन का प्रसंग है, आत्माओं का परमात्मा से मिलने की एक रात्रि है। भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा आनंद से खिली रात्रि में योग माया का आश्रय लेकर महारास रचने का संकल्प लिया। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। कृष्ण अकेले ब्रज के वन में खिले फूलों से संपन्न कदंब के नीचे बांसुरी बजाने लगे।
निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानस आजगमुरन्यो न्यमलक्षितोद्धमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला।
भगवान की बंशी की ध्वनि ने गोपियों के मन में कृष्ण से मिलने की आकांक्षा को तीव्र कर दिया। सभी गोपियों का मन बंसी ध्वनि में बंध गया, वे अलग अलग अपने घरों से निकल पड़ी और असंग सी बदहोश सी कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। उनका वेग उनके कुंडलों के हिलने से प्रकट होता था। भगवान ने योग माया के सहारे रास लीला का सारा प्रबंध कर दिया। गोकुल की सारी स्त्रियां अपने अपने काम पति पुत्र भाई को छोड़कर कृष्ण की बंशी ध्वनि से आकर्षित होकर दौड़ पड़ी थी। प्रश्न ये उठता है कि जब घर से दौड़ी तो उनके पति पिता भाइयों को क्यों नहीं पूछा कि रात्रि में काम छोड़कर कहां जा रही हो। कारण एक ही था, चीरहरण के माध्यम से कृष्ण ने उन्हें शरीर से आत्म तत्व को पृथक करने का भेद सिखा दिया था। सभी गोप कन्याओं के शरीर मन बुद्धि से घर की सेवा में रत थे और आत्मा परमात्मा से मिलकर रास रचा रही थी। कृष्ण ने पहले ही कह दिया था कि मेरा आत्मा से संबंध हो सकता है, शरीरों से नहीं। कृष्ण भावना से जुड़कर गोपियां मंडलाकार नाच रही थी, जैसे सृष्टि काल चक्र में बंध कर नाचती है। उस अलौकिक रास की ध्वनि मात्र से संसार के जीव पद पदार्थ स्तब्ध हो गए। यमुना का प्रवाह रुक गया, चंद्रमा की यात्रा बंद हो गई, सूर्य स्थिर हो गया, शिव की ताल टूट गई, रंभा का नृत्य रुक गया। प्रत्येक गोपी को ऐसा लगता था कि वह कृष्ण के साथ ही नृत्य कर रही है। उनमें कुछ गर्व भी आ गया कि परमेश्वर तो मेरे हैं, केवल मेरे। अहंकार अज्ञान का जन्मदाता है, या यूं कहिए कि अज्ञान से अहंकार होता है। भगवान तो हैं ज्ञान रूप, ज्ञान आया तो अज्ञान गया और अज्ञान आया तो ज्ञान गया। जैसे ही गोपियों के मन में गर्व हुआ कि परमात्मा केवल उनका है, भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि अज्ञान में अहंकार में परमात्मा नहीं रहते। इसीलिए परमात्मा को भक्ति से पाया जाता है, प्रेम कामना से नहीं। मैं जिससे भक्ति करता हूं चाहता हूं कि आप भी उससे भक्ति करें, किंतु जिससे मैं प्रेम करता हूं मैं नहीं चाहता कि दूसरा भी उससे प्रेम करे या वो किसी अन्य से प्रेम करे। परमात्मा तो सभी का है, उससे भक्ति की जा सकती है, प्रेम नहीं। भक्ति तीव्रता प्रेम की तीव्रता जैसी होनी चाहिए। इसी तीव्रता को पाने के लिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं,
कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमीदान, तिमि रघुनाथ निरंतर ही प्रिय लागौ मोहि राम।
कृष्ण के अंतर्धान हो जाने पर जो गोपियों की दशा हुई उसका वर्णन करना कठिन है। जैसे सर्प की मणि खो जाए, जैसे किसी का सारा धन लूट जाए, विरह बिछोड़ना ताप को जन्म देता है और ये कालांतर में तप बनकर व्यक्ति के सभी पापों को धो देता है। इसीलिए भक्त विरह भाव में रहता है, तप करता है, इसमें प्रिय के प्रति ध्यान बना रहता है। इसलिए भक्त मोक्ष नहीं मांगते, मांगते हैं तो केवल भक्ति।
बार बार बर मांगहूं हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग।
भगवान के प्रसन्न होने पर हनुमान जी ने भी यही माना,
नाथ भक्ति अति ही सुखदायिनी, देहु कृपा करही अन पायनी।
विरह ने गोपियों के काम जनित प्रेम को भक्ति में बदल दिया। गोपी गीत विरह में गाया हुआ गीत है, आह से निकला हुआ गान है, पीड़ा से फूट फूट कर बहा हुआ गान है।
जयति तेधिकम जन्म ना ब्रजा, श्रयति इंदिरा शश्वदत्र ही दैत दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सब स्वाम विचिन्वते।
हे मनमोहन कृष्ण, तुम्हारे होने मात्र से ब्रजमंडल वैकुंठ धाम गोकुल से महिमा गौरव में भी बढ़ गया है। ये देख लक्ष्मी स्वयं वैकुंठ छोड़कर ब्रज में आ गई है, परंतु तुम ब्रज छोड़कर कहाँ जा छिपे हो? हमने तो अपने प्राण तुम्हारे चरणों समर्पित कर दिए हैं, वन वन भटक रही हैं, तुम्हारे चरण कमलों को ढूंढ रही हैं, कहाँ हो मोहन? दर्शन दो हमारे प्रेम भरे हृदय के, आप ही तो स्वामी हैं। हम बिनमोल बिकी आपकी दासियां हैं, जैसे शरद काल में जलाशय में खिला हुआ कमल सुंदर लगता है, उसी सुंदरता से भरे नेत्रों के कोने के बाणों से तुमने हमें घायल कर दिया है। हमें पता है वध तो अस्त्रों से होता है, फिर नेत्रों से हमारा वध क्यों करते हो? इससे न हम मरते हैं न हम जीवित रहते हैं। जब गोपियों का अहंकार अज्ञान उनके विरह जनित आंसुओं के साथ बह गया, उनका कामजन्य एकांगी व्यक्तित्व तो प्रेम भक्ति में बदल गया। प्रेम व्यक्तिगत है और भक्ति समष्टिनित, भगवान किसी एक के नहीं, वे तो सबके हैं, समष्टिगत है। इसीलिए सर्वव्याप्त भगवान को सब में व्याप्त भक्ति से पाया जा सकता है, एकांगी प्रेम से नहीं। गोपियां एकांगी कामजन्य प्रेम से निकल जैसे ही बाहर समष्टिगत जीवन में आई, भक्ति भाव से भरी भगवान प्रकट हो गए। एकांगी रास महारास में परिवर्तित हो गया। संसार संसरति इति जो चलता है वो संसार, उस महारास को देखने से सारा संसार रुक गया। सूर्य चंद्र नक्षत्र मालिका यमुना वायु सब स्तब्ध मूक चुप। महाराज चल रहा है, आत्मा और परमात्मा का नृत्य। लौकिक जगत आत्महीन होकर रुकेगा नहीं तो चलेगा कैसे। सर्वव्यापी भगवान महाराज में निमग्न है। जब वो महाराज से निकलकर लौकिक जगत में व्याप्त होंगे तब जगत ये संसार बनेगा। लौकिकता से अलौकिक जगत में ले जाने वाले धर्म हमें चाहिए। ये धर्म निर्मत्सर होकर ही प्राप्त होता है। मत्सर हैं काम क्रोध लोभ मद राग द्वेष आदि। गोपियां निर्मत्सर हुई तो उन्हें भगवान मिले। विशुद्ध अंतःकरण वाले संत सदा कृष्ण के ध्यान सरोवर में नहाते रहते हैं। गोपियां हर काम हर सांस में कृष्ण का ही ध्यान रखती हैं। महाराज के बाद तो गोपियां कृष्ण को सदैव अपने पास ही पाती हैं, सदैव गोविंद गोविंद गाती हैं।
गोविंद दामो दर माधवेती हे कृष्ण हे यादव हे सखेती गोपी दही छाछ बिलो रही थी मीठा करे शब्द बड़ा मथानी गाती मथानी संग नारी सारी गोविंद दामोदर माधवेती धन्य सभी हैं ब्रज गोपिकाएं गाती सदा जो हरि नाम प्यारा हाथों से करती मुख से बेगाती गोविंद दामोदर माधवेती ओम तत्सद्विती।